शहर की हलचल अब धीमी पड़ने लगी थी, लेकिन राजवंशी हाउस के भीतर एक अलग ही बेचैनी का माहौल था। हवेली जैसे उस आधुनिक महल के हर कोने में शांति थी, पर उस रात का डिनर टेबल जैसे किसी अनकहे तूफान से पहले की ठहराव से भरा हुआ था। अर्जुन की कार जैसे ही पोच में आकर रुकी, बाहर खड़ा सफ़ेद पोशाक में वर्दीधारी स्टाफ झुककर सलाम करने लगा। अर्जुन ने गाड़ी से उतरते हुए बस हल्के से सिर हिलाया और भारी कदमों से अंदर की ओर बढ़ गया। कॉरिडोर से गुजरते हुए उसकी नज़रें बस फर्श पर टिकी रहीं। उसके भीतर का तनाव उसके चेहरे की सख्ती में साफ झलक रहा था। डाइनिंग हॉल, चारों ओर रॉयल साज सज्जा, महंगी लकड़ी की टेबल, दीवारों पर राजवंशी खानदान की पेंटिंग्स और उनके सामने मोमबत्तियों की लौ में झिलमिलाता नीरव माहौल। टेबल पर उस वक्त चार लोग मौजूद थे। अर्जुन के पिताजी यशवर्धन राजवंशी, सदी हुई गंभीरता और अनुशासन की जीती जागती मिसाल, माँ, दादाजी और अर्जुन खुद। राघव इन दिनों बैंगलोर में कॉलेज की पढ़ाई में व्यस्त था और अखिल हमेशा से अलग ही चलता आया था। वो शहर से दूर फार्म हाउस पर रहना पसंद करता था, अपनी मर्जी से, अपनी रफ्तार में। अर्जुन ने जैसे ही कुर्सी खींचकर बैठना चाहा, पिताजी की गहरी आवाज़ ने हवा चीर दी। आज शाम तुम्हारे ससुराल से फ़ोन आया था। सभी की नज़रें एक पल में अर्जुन की तरफ उठ गईं। उसने चुपचाप पानी का गिलास उठाया और बस इतना कहा, हूँ। यशवर्धन ने अपनी चम्मच प्लेट में रखते हुए कहा, तुम्हें बुलाया है, उनके यहाँ कोई पारिवारिक कार्यक्रम है। पूनम के पिता ने विशेष रूप से कहा कि तुम्हारी उपस्थिति जरूरी है। अर्जुन ने सीधे उनकी आंखों में देखा, शांत लेकिन सख्त। मैं नहीं जाऊंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। गरिमा ने एक पल के लिए अपनी प्लेट की तरफ देखा, फिर अर्जुन की ओर। बेटा, वो लोग तुम्हारी राह देख रहे होंगे, कोई छोटा मोटा फंक्शन नहीं है, लड़की का घर है, रिश्ता है। रिश्ता? अर्जुन की आवाज में कटाक्ष था, जिसमें ना भावना है, ना समझदारी, ना कोई अपनापन। वो रिश्ता? ये मजबूरी है माँ, रिश्ता नहीं। यशवर्धन की आंखें सख्त हो गईं। अर्जुन, ये तुम्हारा निजी मामला नहीं है, ये दो परिवारों के बीच का मामला है। तुम्हारे फैसले अब सिर्फ तुम्हारे नहीं होते, तुम्हारा हर कदम इस खानदान की छवि को प्रभावित करता है। और मेरी अपनी छवि, मेरी पसंद नापसंद, मेरा मन, वो कहाँ है? अर्जुन की आवाज अब तनी हुई थी। जिस रिश्ते को आपने सिर्फ बिजनेस के फायदे के लिए खड़ा किया, उसमें मैं क्यों अपना समय और इमोशन झोंकूं? बस, यशवर्धन की आवाज टेबल से टकराकर जैसे दीवारों में गूंज गई। हमने हमेशा तुम्हारे लिए सोच समझकर फैसले लिए हैं। अगर तुम्हारी शादी उस परिवार में करवाई गई तो उसके पीछे कारण थे, तुम्हारा भविष्य, कंपनी का विस्तार, सामाजिक संबंध, लेकिन तुम्हें तो बस अपनी मनमानी करनी है। गरिमा बीच में बोली, मैं बात करूंगी उससे, पूनम से। थोड़ी नाराजगी है, पर शायद थोड़ी मुलाकातों से बात बन जाए। अर्जुन, नहीं माँ, अर्जुन ने नरमी से पर दृढ़ता से कहा, मैं अब कोई दिखावा नहीं करना चाहता और ना ही अपनी भावनाओं को झूठे रिश्तों में खपाना चाहता हूँ। दादाजी जो अब तक चुप थे, उन्होंने धीमे स्वर में बस एक वाक्य कहा, कभी कभी खून से बड़ा होता है कर्तव्य। अर्जुन ने उनकी ओर देखा, बूढ़ी मगर अब भी कठोर निगाहें जो हर पीढ़ी को नाप चुकी थीं। और कभी कभी कर्तव्य को भी इंसानियत के तराजू पर तौलना चाहिए दादाजी, अर्जुन ने उतनी ही शांति से जवाब दिया। यशवर्धन का चेहरा अब सख्त पड़ चुका था। अगर तुम्हें नहीं जाना है तो कम से कम एक पत्र या मैसेज भेज दो, ये मत होने दो कि लोग कहें राजवंशी परिवार का बेटा फंक्शन में नहीं आया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अर्जुन ने कहा, अगर मैं वहां नहीं जाना चाहता तो कोई बनावटी बहाना नहीं बनाऊंगा। कभी कभी चुप रहना ही समझदारी होती है, यशवर्धन ने कुर्सी से उठते हुए कहा, पर तुम हर बार सच बोलने की जिद में सब कुछ बिगाड़ देते हो। उन्होंने अपनी प्लेट वहीं छोड़ दी और बिना किसी को देखे डाइनिंग रूम से बाहर चले गए। कुछ क्षणों की चुप्पी, गरिमा की आंखों में चिंता थी, दादाजी की आंखों में मौन निर्णय। अर्जुन वहीं बैठा रहा, अब भी अपनी प्लेट को अनदेखा करते हुए। वो किसी से नहीं लड़ा था, वो खुद से लड़ा था। वो जानता था कि पूनम उसके लिए कभी वो नहीं बन सकती जो अनु है, और अब वो ये दोहरा जीवन नहीं जी सकता था, ना अपने मन से दूर, ना किसी के मन को झूठा दिलासा देकर। वो उठा, एक गहरी सांस ली और धीमे कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गया।